جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس سے پہلے کہ ہم پڑھنا شروع کریں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا آخری کلاس میں، ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ آج اس بات کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کلاس ہے نا، آن لائن کلاس، ٹھیک ہے، اس آن لائن کلاس کے اندر آپ یعنی ٹیچر کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا آداب کی رعایت جو ہوتی ہے وہ کافی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہیں وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر شاید دوسروں کو میسیجز کے جواب دے رہے ہوں، یا کوئی اور اس قسم کی غیر ضروری چیز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ضروری چیز تو پھر چلو اس کی تو ایکسیپشن نکل آتی ہے، لیکن غیر ضروری کام کرنا اور اس طریقے سے اس کلاس کو ٹریٹ کرنا جو ہے نا، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس میں معاملہ استاد کا نہیں ہوتا، کیونکہ استاد، ٹھیک ہے جی، استاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بہت ہی گناہ گار اور بے عمل اور ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود ہے، تو ہماری ادب کی تو آپ کو ضرورت ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سبجیکٹ میٹر ہے، تو سبجیکٹ میٹر تو اس یعنی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، اور اللہ کے قرآن کی ہی تفسیر آپ کو سمجھائی جا رہی ہے نا، پڑھائی جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کلاس میں آ تو رہے ہیں لیکن بے ادبی کی وجہ سے اور قرآن کے آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے کہیں یہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، ٹھیک ہے، ایک تو نہ آنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی طرف بلایا جا رہا ہے اور آپ جو ہے وقت ہونے کے باوجود اور سہولت ہونے کے باوجود اس کے اندر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ آنا جو ہے یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کے بعد آ جانا اور پھر اس کے بعد بے ادبی کا ارتکاب ہونا، مرتکب ہونا، تو یہ بھی کوئی کم مصیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ہی گھنٹہ ہے یہ سر، اور ٹوٹل ہفتے کے اندر 2 گھنٹے ہوتے ہیں، رائٹ، منڈے اور وینسڈے، تو اگر 2 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیڈیکیٹ کر لیں اور ذرا ادب کی رعایت کے ساتھ اس کلاس کے اندر شامل ہو جائیں تو بہت بڑی تو بالکل الٹا میرا کوئی اگر اس کے اندر کسی کو سوال جی، نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اگر کسی کو سوال ہو اس کے متعلق، یعنی آن لائن آداب جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اور آف لائن کر سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو پیج نمبر ہے 424 لکھا تھا وہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں یہ بات کرتے ہو جو کہ تم کرتے نہیں ہو، यानी कहते हो जो तुम करते नहीं हो। कबूर मक्तन अंदुल्लाह अन तक़ुलू मा ला तफ़अलून, तो मा ला तफ़अलून की दाही मानी तो हमें पढ़े थे ना कि जो काम तुम्हें करना नहीं है उसका दावा क्यों करते हो। यहाँ पर दावे की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप दावा ना करें किसी ऐसी चीज़ का जो कि आप नहीं करते हैं या आप को पता ही नहीं है कि आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो फरमाया कि जिससे ऐसे काम के दावे की ममानियत तो वाज़ हो ही गई है कि जिसको करने का अज़्म व इरादा ही इंसान के दिल में ना हो, क्योंकि ये तो महज एक झूठा दावा है। नामो नमूद वगैरह के लिए हो सकता है कि भाई ज़रा मैं बड़ा सा एक दावा कर दूं ताकि लोग जो है ना वो मुझसे यानी मरऊब हो जाए, मेरे रोब में आ जाए कि देखो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो यकीनन इसके अंदर कुछ होगा, जब तो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो झूठा दावा है ना, और झूठ जो है ना ये तो आपको पता ही है, एक बहुत हमारे यहाँ बात होती रहती है कि झूठ जो है वो अल्लाह ताला का हक मारना है, और ये यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके ऊपर अल्लाह ताला जो है ना वो फिर बंदे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं जब वो झूठ बोलता है। आपसे कोई झूठ बोल करके देखे तो कितना अच्छा लगता है, लगता है ना अच्छा, जब आपसे कोई झूठ बोलता है, आपका छोटा कोई आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है तो बहुत दिल में मोहब्बत आती है उसके लिए। कोई कोई आपको धोखा देता है तो आपके लिए दिल में उसकी कोई उसके लिए मोहब्बत आती है, रहमत आती है, प्यार आता है। उसके ऊपर तो गुस्सा आता है ना जब झूठ बोल रहा हो कोई आपके साथ, ठीक है। तो जब हम झूठ बोल रहे होते हैं ना किसी भी मामले के अंदर तो हम दरअसल अल्लाह ताला का हक मार रहे होते हैं। कैसे अल्लाह ताला का हक मार रहे होते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उस मामले को जिस मामले के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं उसको एक मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने रखा था, ठीक है, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। अल्लाह ने उसको किसी और तरीके से रखा, किसी और तरीके से उसको बनाया, ठीक है, उस मामले को किसी और तरीके से अंजाम अल्लाह ताला ने दिलवाया, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं बल्कि उस तरीके से हुआ जिस तरह मैं कह रहा हूँ। ये होता है अल्लाह ताला का हक मारना, ठीक है। तो इस वजह से ना झूठ जो है वो हुकूकुल इबाद में से नहीं है, ये हुकूकुल्लाह में से है, ठीक है। और इसकी इसका वबाल जो है ना वो इंसान के ऊपर फौरन पड़ता है, ठीक है। झूठ एक ऐसा ऐसा गुनाह है कि जिसका वबाल इंसान के ऊपर फौरन पड़ता है, ठीक है ना। कुछ होते हैं ना गुनाह जिनका वबाल बाद में आता है, माँ बाप की अगर आप माँ बाप के साथ बुरा मामला करेंगे तो आपके बुढ़ापे में आपके साथ फिर बुरा मामला होगा, तो बहुत सारे साल लगने के बाद वबाल आता है। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि जिनका वबाल जो है वो आखिरत की ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। लेकिन झूठ एक ऐसा गुनाह है जिसका वबाल जो है ना इंसान की ज़िंदगी में फ़ौरन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। रहमत के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं और इंसान का एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है दूसरों की नज़रों में, ठीक है। तो ये सब तो इमीडिएट आने वाले कैश बबाल है ना। तो इस वजह से झूठ जो है ना इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें फिक्र करने की जरूरत है कि ये हमारी जिंदगी से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो झूठा दावा जो है ना ये तो आउटराइट बहुत ही बुरी चीज हो गई, मगर जाहिर है कि शान नुजूल के वाकये में जिन सहाबा ने मुजाकरा किया, बिकॉज इस पर्टिकुलर आयत का शान नुजूल तो सहाबा के बारे में, तो उन्होंने जो ये ऐसा दावा किया था ना तो वो तो ऐसे लोग नहीं थे कि दिल में कुछ करने का इरादा ही ना हो और दावा करना शुरू कर दें। इसलिए इसके मफहूम में ये भी शामिल है कि अगरचे दिल में अज़्म और इरादा काम करने का हो फिर भी अपने नफ्स पर भरोसा करके दावा करना कि हम फुलां काम करेंगे शान अबदियत के खिलाफ है, ठीक है। अपने आप पर भरोसा करना, इस टॉपिक के ऊपर फिर हमने थोड़ी बात भी करी थी कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हमने अडॉप्ट कर ली हैं नॉन मुस्लिम कल्चर से कि ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट, हैव यानी इस तरह की जो ये जो जो बातें हैं मोटिवेशनल टाइप की बातें हैं, हमें इनसे तौबा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली ये बात यानी बजाय हम तो समझते थे बड़ी आसान सी बात है, आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन आगे से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जिससे लगता है कि नहीं बात समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो अब कैसे समझाएं आपको ये बात, राइट, कि ये यानी एक ईमान वाला जो है ना उसकी ज़ुबान से इस तरह की बातें जो है वो कैसे निकल सकती हैं। अब उसके ऊपर फ़ौरन हमें फतवे याद आने शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन हमें कि भाई वो क्या ये काफिराना भाई, ये मतलब क्या इस कुफर हो जाएगा, ये भाई कुफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें, ठीक है, क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें, मोटिवेशन क्या होगी इससे, कोई मोटिवेशन नहीं होगी इससे, ठीक है। खामखा की एक जो है वो ढकोसले होते हैं ये, और हम अपने आप को खुश कर रहे होते हैं कि हाँ अगला बंदा वो जो है ना वो मोटिवेट हो रहा है, ठीक है। अगला बंदा कोई हमारी बातों से मोटिवेट नहीं हो सकता जब हम उसको झूठ बोल करके या ये उल्टी सीधी बातें करके उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अल्लाह ताला को गैरत आए, अल्लाह ताला को गैरत आए कि ये है मुसलमान, ये है मेरा मानने वाला, ये है मेरा ईमान वाला, जिसको कि मैं नजर नहीं आता मोटिवेट करने के लिए, मैं काफी नहीं हूँ मोटिवेट करने के लिए, है कि ये इस किस्म की काफिरों की बातें जो है, काफिरों की टर्मिनोलॉजी जो है, वो इस्तेमाल करके किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मेजर मसला है हमारा, बहुत मेजर मसला है कि हम सेक्युलर तरीके से काम करना चाहते हैं। अल्लाह ताला को ना बिल्कुल नाउज़ु बिल्ला सुम्मा नाउज़ु बिल्ला, हम अपनी अपने कॉन्वर्सेशन में से, हम अपने डिस्कोर्स में से अल्लाह ताला को ऐसे निकाल निकाल देते हैं जैसे सुम्मा नाउज़ु बिल्ला दूध में से मक्खी को निकालते हैं ना, कि दूध जो है वो बिल्कुल दूध का बिल्कुल दूध नजर आता है, उसके अंदर कोई काले और कोई ऐसी गंदी चीज नजर नहीं आती, बस मक्खी निकल जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही हम अपने कॉन्वर्सेशन में से और अपने डिस्कोर्सेज में से अल्लाह ताला को निकाल देते हैं। ठीक है ना, और हम समझते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई गुनाह ही नहीं है, ये तो हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत काम है, बहुत बड़ा गलत काम है। ठीक है, और खुसूसन जो है ना, माँ बाप, आप में से जो माँ बाप है ना, वो इस बात को याद रखें कि जब आप अपने बच्चों को कोई नसीहत कर रहे होते हैं और बच्चों की इस्लाह की कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो याद रखें उस इस्लाह की बात के अंदर से अल्लाह ताला को मत निकालें। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस्लाह की बात करते हैं कि यानी जो ना चाइल्ड साइकोलॉजी वाली बात है, साइकोलॉजिस्ट की जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, उन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करके बच्चों की इस्लाह कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहने लगा कि यानी जो मिसाल के तौर पर एक दे रहा हूँ कि जैसे वीडियो गेम्स हैं, ठीक है ना, अब वीडियो गेम्स जो है वो दूसरे बच्चे खेलते हैं, स्कूल के बच्चे खेलते हैं और खानदान के बच्चे खेलते हैं, तो अब बच्चा भी जो है जिद कर रहा है कि मुझे भी वीडियो गेम खेलने, मुझे भी वीडियो गेम खेलने। ठीक है, तो अब उसकी इसलाह कैसे कर रहे हैं कि बेटा वीडियो गेम खेलने से जो है ना वो आंखें खराब होती हैं, और वीडियो गेम खेलने से जो है ना वो दिमाग खराब होता है, यानी इस तरह की बात है ना, यानी आपकी आपकी मेंटल जो जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो मुतासर होती हैं, आपके जो है वो आईज मुतासर होती हैं, आपके स्कूल के की पढ़ाई का हर्ज होता है। ठीक है, आपके स्कूल की पढ़ाई का हर्ज होता है, और अब ये होता है वो, यानी ये सब इस तरह की बातें करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो गेम खेलने से। ठीक है ना, ये क्यों नहीं कहते हैं कि बेटा आप जिन लोगों की वजह से प्रेशर में मुबतला हैं, जो आपके ऊपर पीयर प्रेशर आया हुआ है, ठीक है ना, यानी उसके ऊपर देखें, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है पीयर प्रेशर, ठीक है, लेकिन समझे ना इस बात को कि वो आपसे क्यों इस तरह की चीजें मांग रहा है जो कि आपके घर में नहीं है, जो कि आपने अपने बच्चों के लिए चूज नहीं करी है, जो आप समझते हैं कि आपके बच्चों के लिए नुकसान दें, क्यों वो इतना ज्यादा इसरार कर रहा है इन चीजों के लिए? क्योंकि जिस माहौल में वो जा रहा है, स्कूल का जो माहौल है या इवन खानदान का जो माहौल है कजन्स के साथ, राइट, तो वहां पर सारे के सारे लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो इस प्रेशर की वजह से आपसे इसरार कर रहे हैं ना उस चीज का, जो कि उसको पता है कि मेरे मेरे वालिद साहब को पसंद नहीं है, मेरी वालदा को पसंद नहीं है, तो क्यों वो इसरार कर रहा है, प्रेशर में आ गया है वो, तो इस प्रेशर से आप निकालने के लिए ना इस किस्म की बातें करने से वो नहीं निकलेगा प्रेशर से। ये जो आंखें खराब होने वाला, तो क्या दूसरे बच्चों की आंखें नहीं होती हैं? मतलब आपकी ये बातें जो है ना, ये है तो ये इस्लाही बातें, ठीक है ना, नुकसान बता रहे हैं आप वीडियो गेम्स का, इस्लाही बातें कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाही बातें जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये उस पीयर प्रेशर का मुकाबला कर सकें। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इन बातों के अंदर कि उस पीयर प्रेशर के मद्दे मुकाबल बन सकें, उसके खिलाफ खड़ी हो सकें, बिकॉज वो जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा शदीद है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस उस पीयर प्रेशर का मुकाबला करने के लिए आपको कोई उससे ज्यादा स्ट्रांग चीज लानी होगी। वो ज्यादा स्ट्रांग चीज क्या होगी कि वो जो जिन बच्चों की वजह से वो मुतासिर हो रहा है, राइट, आपको उन उन लोगों के बारे में जो जो इसके दिल में एक चाहत है ना कि मैं भी उनके जैसा बनूं, मैं भी उनके दरमियान जो है वो एक्सेप्टेबल फिगर बन करके रहूं, क्योंकि सारे मेरे कजन्स खेलते हैं, सारे मेरे स्कूल वाले खेलते हैं, तो मैं ऑड मैन आउट बना हुआ हूं, ही फील्स लेफ्ट आउट, राइट, ही फील्स लेफ्ट आउट, इसको आपने हैंडल करना है, इसकी आपने क्योर करनी है, ही शुड नॉट फील लेफ्ट आउट, राइट, ही शुड नॉट फील लेफ्ट आउट, व्हाई इज ही फीलिंग लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, मिसाल के तौर पर चंद गधे खड़े हुए हो, राइट, चंद गधे खड़े हुए हो, तो आपका बच्चा अगर गधों के दरमियान जाकर के खड़ा हो जाए और वो कहे कि अब्बू आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज ये सारे के सारे गधे हैं और मैं गधा नहीं हूं, तो व्हाई एम नॉट व्हाई एम आई नॉट अ गधा, तो आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। ये गधे जो है मुझे देख करके हंस रहे हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से कोई चीज आ गई है। सही है, तो अब आप उसको क्या समझाएंगे, बेटा ये तो गधे हैं, ये तो गधे हैं, यू शुड नॉट फील लेफ्ट आउट अमंग द गधास, है ना। या उसको बोलेंगे नहीं नहीं बेटा तुम भी थोड़ी से गधे वाली हरकतें करना शुरू कर दो सो दैट यू डोंट फील लेफ्ट आउट। ये बोलेंगे आप उस बच्चे को, अपने बच्चे को ये बोलेंगे तुम भी गधों वाली हरकतें शुरू कर दो, है ना, तुम्हें भी हम थोड़ा सा गधे वाली जो है वो कोई चीज ला करके दे देते हैं ताकि तुम भी जो है वो गधे गधे थोड़ा ज्यादा थोड़ा बहुत बन सको गधा तुम भी। नहीं, नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे ना आप इस तरीके से, ठीक है ना। आप उसके सामने गधों की बुराई बयान करेंगे ना कि भाई ये तो गधे हैं, ये तो इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं ये तो कोई अच्छी हरकतें नहीं है। तो बेटा आप तो इन लोगों के दरमियान एक्सेप्टेबल बनने की कोशिश ना करें ना, आप तो इंसान के बच्चे हैं ना, राइट। आपको तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है ना, आपको तो अल्लाह ताला ने वो नेमतें अता की है ना जो कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन अपनी तखलीक को अता करी है। तो आप उनके दरमियान अपने आप को ऐसा मत तसव्वुर करें ना, राइट। इस तरीके से आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को जो है बोलना शुरू कर दें कि आपके स्कूल के सारे बच्चे गधे हैं, ये आप नहीं बोले, लेकिन मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो हर तरीके से उनके दरमियान यानी उनके सारे जो अमाल है ना वो बहुत ज्यादा खराब अमाल, बहुत ज्यादा, यानी सिर्फ मेडिकल साइंस ने प्रूव नहीं किया है कि वो गलत कर रहे हैं, हर लिहाज से वो गलत कर रहे हैं। दुनिया भी उनकी तबाह हो रही है, आखिरत भी उनकी तबाह हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसलाह करनी है। हम क्या करना शुरू हो जाते हैं, हम सेक्युलर तरीके से इसलाह करना शुरू हो जाते हैं। सेक्युलर इसलाह जिसके अंदर डिवाइन नहीं होता है, जिसके अंदर रूहानियत नहीं होती है, सही है। सेक्युलर इसलाह समझते हैं ना इस बात को, सेक्युलर क्या चीज होती है, विच इज नॉट डिवाइन, ठीक है ना। पूरे मुल्क जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर बनाया हुआ है ना, ठीक है ना। क्या दीन, ये कुरान सेक्युलर है, ये दीन सेक्युलर है, दीन तो सेक्युलर नहीं है ना, कुरान तो सेक्युलर नहीं है ना, हमारी जिंदगी तो सेक्युलर नहीं है ना, हमारी जिंदगी तो रब ने जो बनाई है वो तो डिवाइन जिंदगी बनाई है ना। तो हमारी बातों के अंदर डिवाइन एस्पेक्ट क्यों नहीं होता, हमारी नसीहत के अंदर, हमारी सोच के अंदर डिवाइन एस्पेक्ट क्यों नहीं होता। हम अपने बच्चों के सामने जो है वो अल्लाह का जिक्र करने से क्यों शर्माते हैं। बच्चा कोई गलत बात करे तो उसको क्यों कहने से हम शर्माते हैं कि बेटा ये जो आप कर रहे हैं ना तो अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है, अल्लाह ताला तो नोट कर रहा है, तो अल्लाह ताला से अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो फिर आप बचेंगे तो नहीं है। और बच्चा जब आपको कोई ताना दे तो आप बच्चों को बोले कि बेटा अगर मैं गलत काम करूंगा ना तो अल्लाह ताला से मैं भी नहीं बचूंगा, तो बेशक अगर मुझसे गलती हो गई है मैं तौबा करता हूँ अल्लाह ताला से, राइट। और अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो आप जो है वो आपके बोलने से तो मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला को ना अपनी कॉन्वर्सेशन से हरगिज 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 नहीं निकाले। अल्लाह ताला को गैरत आती है इससे कि ये किस किस्म का मुसलमान है, ये किस किस्म का दीनदार है, वो भी दीनदार मुसलमान, नमाजें पढ़ने वाला, मस्जिद जाने वाला और कुरान की तफसीर पढ़ने वाला और आलिम बनने की ख्वाहिशात रखने वाला, राइट। किस किस्म का ये मुसलमान है, इसको शर्म आती है मेरा नाम लेते हुए, इसको इसको शर्म नहीं आती जब ये काफरों के तरीके के ऊपर बात करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, इसको शर्म नहीं आती इसको इस तरीके की बातें करते हुए, सही है। तो सोचें इस बात के ऊपर, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सुन करके दोबारा से उसको समझने की कोशिश करें। आगे फरमाया मसला, ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स गधापन, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स यानी गधापन है जब हम इस तरीके की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी तवज्जो नहीं दी इस बात पर, चले अब तवज्जो दे दें। हजरत जब हम साइंस पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक इज ऑलवेज रूल्ड आउट, तो इतना तो आपका ईमान होना चाहिए ना कि आप साइंस को रूल आउट करें, अल्लाह ताला को रूल आउट ना करें, ठीक है। मसला इससे मालूम हुआ कि ऐसे काम का दावा करना जिसके करने का इरादा ही ना हो और उसको करना ही ना हो, ये तो गुनाह कबीरा और अल्लाह की सख्त नाराजगी का सबब है। कबूर मक्तन अंदल्लाही का मिस्दाक यही है, यानी यही मतलब है कबूर मक्तन अंदल्लाही का। और जहां ये सूरत ना हो बल्कि इरादा करने का हो, वहां भी अपनी कुव्वत और कुदरत पर भरोसा करके दावा करना ममनू व मकरूह है, ठीक है। मना है यानी ममनू है, मतलब यानी मना किया गया है इस तरह का दावा करना। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दावा और दावत में फर्क, ठीक है। दावत देना, ये वो कबाब पराठे वाली दावत की बात नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि दावत देना, नेकी की तरफ बुलाना, तो इन दोनों में क्या फर्क है? मज़कूरा तफसीर से ये मालूम हो गया कि इन आयात का ताल्लुक दावे से है कि जो काम आदमी को करना नहीं है उसका दावा करना अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है। रहा मामला दावत व तबलीग और वाज़ व नसीहत का कि जो काम आदमी खुद नहीं करता उसकी नसीहत दूसरों को करे। अब यहाँ पर ना मसला एक एक ये भी है कि दावत और तबलीग का नाम सुनकर के ना हमारे जुबान हमारे जहन में सिर्फ तबलीग जमात और कुछ गलत करते हैं, ऐसे नहीं करते। वो समझते हैं कि हम तबलीग जमात को की तनकीद कर रहे हैं। भाई दावत और तबलीग जो है ना ये तो एक एक मुस्तकिल एक दीन का शोबा है, ये सिर्फ तबलीग जमात के रास्ते से नहीं होती है, ठीक है ना। हमारे मशाइख भी दावत और तबलीग का काम करते हैं, हमारे उलमाए किराम भी दावत और तबलीग का काम करते हैं। इकामत दीन वाली जो जो जमातें होती हैं वो भी दावत और तबलीग का काम करती हैं। खत्म नबूवत वाले लोग जो हैं वो भी दावत और तबलीग का काम कर रहे होते हैं और तबलीग जमात भी दावत और तबलीग का काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो महसूर नहीं है तबलीग जमात के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जी तबलीग जमात की नाउज़ुबिल्लाह उनकी तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। तो दावत और तबलीग की बात हो रही है, विच इज़ यानी एक शोबा है पूरा का पूरा दीन का। तो फरमाया कि रहा दावत और तबलीग और वाज़ नसीहत का काम कि जो काम आदमी खुद नहीं करता उसकी नसीहत दूसरों को करे और इसकी तरफ दूसरे मुसलमानों को दावत दे, वो इस आयत के मफहूम में तो शामिल नहीं है, ठीक है। वो इस आयत के मफहूम में तो शामिल नहीं, उसके अहकाम दूसरी आयात और अहादीस में मज़कूर है, ठीक है। मसलन कुरान करीम ने इरशाद फरमाया अतअमुरून अन्नास बिलबिर कि क्या तुम इंसानों को नेकी का हुक्म करते हो व तनसौन अनफुसकुम और तुम उसको खुद भूले हुए हो, ठीक है। ये है दावत और तबलीग के बारे में आयत, ठीक है। यानी तुमको तुम लोगों को तो नेक काम का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भुला देते हो कि खुद इस नेकी पर अमल नहीं करते। इस आयत ने अमर बिलमारूफ और वाज़ो नसीहत करने वालों को इस बात पर शर्मिंदा किया है कि लोगों को एक नेक काम की दावत दो और खुद इस पर अमल ना करो। और मकसद ये है कि जब दूसरों को नसीहत करते हो तो खुद अपने आप को नसीहत करना इससे मुकदम है। जिस काम की तरफ लोगों को बुलाते हो खुद भी उस पर अमल करो, लेकिन ये नहीं फरमाया कि जब खुद नहीं करते तो दूसरों को कहना भी छोड़ दो, ठीक है ना। जैसे कि उम्मीदी तौर पे एतराज यही होता है कि भाई आप खुद जब नहीं करते हैं तो दूसरों को क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह तरीके से ना लोग दावत और तबलीग करने वाले को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मकसूद नहीं है, बल्कि इससे मालूम हुआ कि जिस नेक काम के खुद करने की हिम्मत और तौफीक नहीं है उसकी तरफ दूसरों को बुलाने और नसीहत करने का सिलसिला नहीं छोड़े। उम्मीद है कि इस वाज़ो नसीहत की बरकत से किसी वक्त उसको भी अमल की तौफीक हो जाए, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि नीयत इंसान की ये हो, दिल में ये नीयत हो कि मैं इस पर अमल नहीं कर रहा हूं, यानी अपनी कमजोरी को एक्नॉलेज कर रहा हो, वो एक्सेप्ट करता हो कि मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इस एक्सेप्टेंस के साथ अगले बंदे को उसने की तरफ बुलाया, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है ना एक्नॉलेजमेंट के साथ बुलाना जो है ना फिर अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए भी तौफीक का बाइस बन जाता है। जैसा कि बकसरत तजुर्बा व मुशाहिदे में आया है, अलबत्ता यानी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो खुद किसी बात पे अमल नहीं कर पाते थे, लेकिन चूंकि इस सोच के साथ वो किसी के साथ दावत यानी किसी को दावत दे रहे होते थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दे दी और वो खुद भी इस पे खड़े होने के काबिल हो गए। अलबत्ता अगर वो अमल वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा दर्जे में हो तो और शर्मिंदा होने का सिलसिला जारी रखना भी वाजिब है, ठीक है। यानी आप जिस चीज के बारे में अगले बंदे को बुला रहे हैं ना, तो वो अगर वाजिब अमल है, ठीक है, जैसे कि नमाज पढ़ना, आप किसी को नमाज पढ़ने की तबलीग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए अपने दिल में भी नादिम और शर्मिंदा होना वो वाजिब है। अगर आप नहीं होंगे तो आप खुद गुनाहगार होंगे, ठीक है। सुन्नत मौकदा है तो अपने दिल में भी आपको यानी शर्मिंदा होना आपके अपने लिए सुन्नत मौकदा है, ठीक है। यानी एक ऐसी सुन्नत है कि जिसको छोड़ना जो है वो नुकसान का सबब बनेगा। और अगर मुस्तहबात के मुतालिक है तो ये सिलसिला निदामत भी मुस्तहब है, ठीक है। यानी अगर आप ऐसी किसी मुस्तहब चीज़ के बारे में किसी को यानी बुला रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपको चाहिए कि आप जो है ना वो एक्स्ट्रा सदका और खैरात भी करें, ठीक है, और आप जो है वो एक्स्ट्रा सदका और खैरात नहीं करते, तो ये सदका और खैरात एक्स्ट्रा करना ये तो मुस्तहब है, ये कोई वाजिब तो नहीं है, ठीक है। तो अब अपने दिल में भी ना ये फिक्र रखना कि भाई मैं भी तो सदका और खैरात नहीं करता हूँ, तो ये जो है ना फिर मुस्तहब के दर्जे में होगा। कि अगर आपके दिल में ये फिक्र नहीं भी है ना तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, बस बेहतर है कि आपकी दिल में ये फिक्र हो कि भाई मैं खुद जो है वो एक्स्ट्रा सदका और खैरात नहीं करता हूँ, तो अगले बंदे को जो बुला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि क्यों बुला रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये एक यानी बात को क्लियर कर दिया कि दावत और तबलीग का काम जो है ना वो फिर भी करना है, लेकिन इस फिक्र के साथ करना है कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इस यानी इस तरह से सोचना है ना कि जी जो मेरे कान हैं वो मेरी जुबान से सबसे करीब है, तो अगर मेरी जुबान के अल्फाज जो है वो मेरे अपने कान में नहीं पहुंच रहे और मेरे कान के थ्रू होते हुए मेरे अपने दिल में नहीं पहुंच रहे, तो अगले बंदे के खाक दिल में पहुंचेंगे, ठीक है। अगली आयात में उस असल मामले का जिक्र है जो इस सूरत के नुजूल का सबब बना, यानी उसका बयान कि अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। इसके मुताबिक इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलून फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब वो सफ़े क़िताल है जो अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए कायम हो, और मुजाहिदीन के अज़्म व हिम्मत की वजह से एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हो कि उनके कदमों में कोई तजलजुल ना आने पाए। तो इस्तकामत के साथ दुश्मन का मुकाबला करना ये अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब अमल है, ठीक है, ज़्यादा महबूब अमल है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि इन सहाबा का ये सवाल था ना कि अगर हमें मालूम हो जाए कि कौन सा अमल अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा महबूब है, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया कि भाई ये अमल है जो कि ज़्यादा महबूब है, ठीक है। लेकिन अब इसमें वही एक बात रिमाइंड करवाने की खातिर और रिपीट करेंगे कि ये जो मामला होता है तो ये जो यानी काफिरों के साथ जो जिहाद वाला मामला होता है ये किसी अमीर के बगैर ये जो है ना वो जिहाद नहीं बनता है बल्कि वो फसाद बन जाता है, ठीक है। तो अमीर के हुक्मों के सामने सर झुकाना, ये सर कटाने से पहले ये शर्त है, ठीक है ना, सर कटाने से पहले शर्त क्या है, सर झुकाना, और किसके सामने सर झुकाना है, आजकल तो कोई अमीर है नहीं तो कम से कम अल्लाह के सामने सर झुका लें भाई, ठीक है। तो अमीर से आप साहब जब आ जाएंगे ना तो फिर अमीर के सामने सर झुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। अमीर से मुराद वो रिच अमीर नहीं बल्कि जो सुल्तान जो होता है जिसको अल्लाह ताला ने पॉलिटिकल माइट दी हुई होती है, ठीक है। तो अगर सर झुकाने का जज्बा बिल्कुल भी ना हो और सिर्फ सर कटाने का जज्बा हो जैसे कि आजकल है, ठीक है, तो फिर सर कटेगा तो ज़रूर लेकिन फिर हाथ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि जो जो था वो भी जाएगा हाथ से, सही है। तो फरमाया कि इसके बाद हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में दुश्मनों की ईज़ाएं सहने का जिक्र है, और इसके बाद फिर मुसलमानों को जिहाद की तलकीन की गई है। तो उन्होंने यानी जो पिछले मुसलमान थे, पिछले अंबिया थे, तो उन्होंने भी बहुत ईज़ाएँ सही थी। हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात जिनका जिक्र इस जगह आया है उनमें भी बहुत से इल्मी व अमली फ़वाद और हिदायात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में है कि उन्होंने जब बनी इसराइल को अपनी नबूवत के मानने और अताअत करने की दावत दी तो दो चीज़ों को खसूसियत से जिक्र फरमाया, एक ये कि वो कोई अनोखे रसूल नहीं और अताअत करने की, एक तो ये कि वो कोई अनोखे रसूल नहीं, अनोखी बातें रह करके नहीं आए बल्कि ये वो बातें हैं जो पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम कहते आए हैं और पहली आसमानी किताबों में मजकूर हैं और बाद में भी जो आखिरी पैगंबर आने वाले, तो अकायद जो है ना वो तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे एक ही हैं, ठीक है, वो तो शरीयत की पाबंदियां और जो आमाल की शक्लें हैं वो बदलती रही हैं नबियों के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर अकायद की बात हो रही है कि ये तो सब वही बातें हैं जो कि पहले भी अल्लाह के नबी लेकर के आते रहे। तो ये लोग जो थे एक्चुअली दुनिया में ना हमेशा ही इन बातों की अवेयरनेस रही है। हम आज के दौर के अंदर ये समझते हैं या समझना शुरू हो गए हैं कि जब कोई नबी आता था ना तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो क्या बातें कर रहा है। बिल्कुल ही कोई अनोखी बातें, लोग उससे वाकिफ ही नहीं होते होंगे, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं होता था, लोगों को पता होता था कि ये जो नबी आए हैं तो ये जो चीज लेकर के आए हैं ना ये पहले से मौजूद है, पहले से उनको वाकयात का पता होता था। बनी इसराइल वालों को तो बहुत ज्यादा पता होता था, बहुत तफसीली इल्म, क्योंकि वो थे ही यानी एक इल्मी घराना, ठीक है। लेकिन इवन मक्का मुकरमा के जो मुशरिकीन थे उनको भी पता होती थी बात, ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये लोग भी वाकिफ थे। ये लोग भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अदाब आया था, और हूद अलैहिस्सलाम और जो कौम आद और कौम सारे, इन सब के ऊपर जो मामला पेश आए थे ना मक्का मुकरमा के काफिर, उन सब से वाकिफ थे, ठीक है। और बाकी जो अंबियाए बनी इसराइल थे उनके बारे में भी इनको कुछ कुछ इन था, और कुरान की आयात इनके ऊपर शाहिद हैं कि ये लोग ये बातें जानते थे, ठीक है ना। बहुत तफसील से हर चीज नहीं जानते थे लेकिन इनको पता था, ठीक है। तो इस तरह से हर नबी जो आया ना इस दुनिया के अंदर, तो उसने फिर इसी तरह से समझाया कि भाई मैं कोई नई बात तो थोड़ी लेकर के आया हूँ, तुम ऑलरेडी इन चीज़ों से वाकिफ हो ना। तो फरमाया कि यहाँ पहली किताबों में से तौरात का खसूसियत से जिक्र गालिबन इसलिए किया कि बनी इसराइल पर नाजिल होने वाली करीबी किताब वही थी। सबसे मेजर किताब जो बनी इसराइल पर नाजिल हुई है वो तौरात ही थी, और यानी फुल किताब की जो फॉर्म में जो किताब है, बाकी जो है वो सहीफों की फॉर्म में आई थी, लेकिन ये एक कंप्लीट बुक की फॉर्म में थी। वरना तस्दीक अंबिया तो सब पिछली किताबों का शामिल और आम है। सिर्फ तौरात की तस्दीक करना लाजम नहीं था, बल्कि जितनी भी किताबें और अंबिया आए हैं सबको, सबकी तस्दीक करना ज़रूरी है। नीज इसमें इशारा इस तरफ भी है कि शरीयत ईसवी अगरचे मुस्तकिल शरीयत है, मगर इसके अक्सर अहकाम शरीयत मूसवी और तौरात के अहकाम ही के मुताबिक हैं। सिर्फ चंद अहकाम हैं जो बदले गए हैं, ठीक है ना। यानी जो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे या उन पर नाजिल हुई थी, तो वो ज़्यादा तब्दीली नहीं थी उसके अंदर, वो ज़्यादातर अहकाम जो थे ना वो वही तौरात वाली अहकाम थे। तो इसके अंदर ना नसीहत वाली बातें ज़्यादा थी, रिमाइंडर्स इसके अंदर ज़्यादा थे, ठीक है ना। अहकाम इंजील के अंदर बहुत थोड़े से नए अहकाम थे। ये तो पिछले अंबिया और किताबों की तस्दीक का मजमून था। दूसरी चीज़ ये कि बाद में आने वाले रसूल की खुशखबरी सुनाई, ठीक है ना। ये वो एक मुकाम है कुरान के अंदर कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम मजकूर है जो कि अहमद, ठीक है। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले थे नबी अलैहिस्सलाम। इसमें भी इस तरफ इशारा है कि उनकी हिदायत भी इसी के मुताबिक होंगी, इसलिए इस पर ईमान लाना ऐन तकाजाए अकल व दयानत है। अकल से सोचो, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ सोचो, तो ईमान लाना तकाजा है भी। अच्छा, तो फरमाए के साथ ही जिस आने वाले रसूल की खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को सुनाई उसका नाम पता भी इंजील में बतला दिया गया। इसमें बनी इसराइल को इसकी हिदायत है कि जब वो रसूल तशरीफ लाएं तो तुम्हारा फर्ज होगा कि उन पर ईमान लाओ और उनकी अताअत करो। मुबशरम बे रसूली यती मिन बाद इस्मुहु अहमद में इसी का बयान है। यानी जो उन्होंने फरमाया तो उसका जो आखिरी हिस्सा है वो ये है, और इसके अंदर इसी बात का बयान है। इसमें आने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद बतलाया गया है। हमारे नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था, और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और भी मुतअद्दिद नाम थे जैसे मुस्तफ़ा, मुजतबा, बशीर, नज़ीर। मगर इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद बतलाने में शायद ये मसलहत हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखने का अरब में कदीम से दस्तूर था, यानी और लोगों के भी नाम ये लोग मोहम्मद रखा करते थे, इसलिए इस नाम के दूसरे आदमी भी अरब में थे, ठीक है। तो अगर मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद बताते तो भाई बहुत सारे मोहम्मद आते चले जा रहे हैं, आते चले। भाई कौन है वो वाला मोहम्मद जिसका कि ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया था, ठीक है। ये बनी इसराइल जो है वो मदीना मुनव्वरा में आकर के सेटल हो चुके थे, जो यहूद थे वहाँ के। तो उनको तो ये सारी बातें पता थी कि तौरात के अंदर और इंजील के अंदर ये सारी बातें हैं, और अरब मुआशरे के अंदर वो देख रहे थे कि भी मोहम्मद और भी होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद का नाम इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अहमद का नाम इस्तेमाल किया, बखिलाफ अहमद के कि ये नाम अरब में मारूफ नहीं था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही के साथ मखसूस था, ठीक है। तो अब आगे वैसे तफसील इसकी आ रही है, ये जो नाम है ना अहमद, तौरात के अंदर ये एज इट इज़ था, अहमद ही था, ठीक है। कोई कोई लैटिन लैंग्वेज में या एरामेक लैंग्वेज में या हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसकी ट्रांसलेशन नहीं थी, बल्कि असल में अहमद ही नाम मजकूर था तौरात के अंदर। अब इसके ऊपर ना एक और भी बात आप लोगों को पता ही होगी कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया में मोहम्मद, ठीक है, और आसमानों में अहमद, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी अगर आप तालिब इल्म के तौर पर सोचें कि भाई दुनिया में मोहम्मद और आसमानों में अहमद, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। बहरहाल जो भी वजह है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन एक दिन में बात आई थी कि भाई मोहम्मद का नाम का मतलब क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, मोहम्मदुन इसम मफूल का सीगा है, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो उसको, यानी बहुत ज्यादा तारीफ की, अल्लाह ताला से ज्यादा तो नहीं तारीफ की गई, लेकिन दुनिया मखलूक के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई वो मोहम्मद, ये मतलब होता है, ठीक है। और अहमद जो है ये तारीफ करने वाला, जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो उसको अहमद कहते हैं, ठीक है। तो अब फरिश्तों के दरमियान अहमद, आसमानों पर अहमद होने का मतलब क्या, फरिश्ते आसमानों पर कौन रहते हैं, आसमान जो है वो फरिश्तों की रहने की जगह है, ठीक है ना, या उनको फरिश्तों का दफ्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि घरों की तो फरिश्तों की जरूरत नहीं है, वो तो काम करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, तो काम किधर होता है, दफ्तर के अंदर होता है। तो आसमान गोया के फरिश्तों के दफ्तर हैं, हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो वहां पर आप किस नाम से मकबूल हैं या मारूफ हैं, अहमद के नाम से। और अहमद जो है तारीफ करने वाला, फरिश्तों का क्या काम है, तारीफ करना अल्लाह ताला की, हम्द करना अल्लाह ताला की, ठीक है ना। चाहे वो कौलन करें, कुछ फरिश्ते जो है वो हम्द करने के ऊपर मामूर है, मतलब उनको हुक्म है कि बस तुम हम्द करते रहो, तुम्हारा काम यही है हम्द करना, तस्बीह बयान करना, ठीक है। और कुछ फरिश्ते जो हैं वो दूसरे कामों के ऊपर मामूर हैं, यानी ये काम कर दो वो काम कर दो, मुख्तलिफ काम, बारिश बरसाने वाला काम, फलाना काम, फलाना काम, ठीक है। तो अब वो कौलन तो अल्लाह ताला की तारीफ नहीं करते होंगे, लेकिन फ़िलन या हालन अल्लाह ताला की तारीफ, उनका भी यही काम है अल्लाह ताला की तारीफ करना, ठीक है। तो अब तारीफ करने वालों के दरमियान वो आप मशहूर किस किस सिफत से हैं, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले, ठीक है। तो एक, यानी एक मुनासिबत भी बनती है, यदि तारीफ करने वालों के दरमियान आप तारीफ करने वाले के नाम से मशहूर थे, ठीक है, और मशहूर हैं, और यहाँ पर जो है वो मामला कि जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। मैंने बयान सुना था मोहम्मद पहले किसी का नाम नहीं था। अच्छा, जिन्होंने आपने जिनसे सुना तो हो सकता है उनकी ये तहकीक हो, लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक तो हमने पढ़ ली। तो वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने भी सुना था कि गालिबन हजरत मौलाना मक्की हिजाजी साहब के बयान में कि होता था नाम मोहम्मद, और उस वक्त ही जो है वो एक से ज़्यादा लोगों ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा था, इवन जब नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, तो उस वक्त भी इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत, तो ये सबको मालूम है, और ख़ुद यहूद व नसारा को भी इसका इकरार करना पड़ा है कि तौरात तो इंजील में तहरीफ हुई है, ठीक है ना। इसको तो वो ख़ुद भी डिनाई नहीं कर सकते कि तहरीफ हुई है, जैसे कि आपने शायद हमारे हजरत का भी एक वाक़या सुना होगा, बयान में बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जब वो अमेरिका में रहते थे तो एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के अंदर ना, एक इंटरफेथ बल्कि मीटिंग हुआ करती थी, तो उसमें इनको उलमा ने रिक्वेस्ट करके कि भाई आप जाएं वहाँ पर, और आप साइंटिस्ट भी हैं और आप आलिम दीन भी हैं और आप शेख भी हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के इस्लाम को ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। तो हज़रत वहाँ पर जाना शुरू हो गए, तो वहाँ पर फिर यानी ना वो हर बंदा फिर अपनी कोई ना कोई बात किया करता था, क्रिश्चियन भी होता था वो भी बात करता था, जू भी होता था वो भी अपने दीन की बात करता था, मुसलमान भी अपने दीन की कोई ना कोई बात करते थे। तो एक दफ़ा इन्होंने प्रपोज कर दिया कि जी, यानी हजरत ने एक दफ़ा कहा कि भाई मेरी एक नेक्स्ट मीटिंग के लिए ना एक प्रपोजल है कि नेक्स्ट मीटिंग में हर कोई जो उसके पास वर्ड ऑफ गॉड है उसमें से कुछ पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, तो सबने बड़ा पसंद किया इस आइडिया को। हाँ हाँ ठीक है, हम नेक्स्ट मीटिंग में ना हर कोई अपने पास जो वर्ड ऑफ गॉड है उसमें से पढ़ करके सुनाएंगे। तो जब नेक्स्ट मीटिंग का मौका आया तो फिर कहा गया कि भाई अच्छा जी आप पढ़ कर सुनाएं। तो वो ईसाई जो था ना वो उसने अपना गॉस्पल पढ़ना शुरू कर दिया। तो हजरत ने उसी वक्त कि भाई ये तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ये तो ट्रांसलेशन है, आपका वर्ड ऑफ गॉड तो इंग्लिश में तो था नहीं, आप तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको तस्लीम करना पड़ा कि हाँ वाकई में ये तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है ये तो इंग्लिश के अंदर इसकी ट्रांसलेशन है। तो उसकी उस मौके पर ना जो वहाँ का एक जो ज्यूइश रैबाई था तो उसने जो है ना मसले को समझ लिया और उसने सबके सामने खुल करके कहा कि मिस्टर अहमद, क्योंकि हजरत का नाम जो है जुल्फकार अहमद है, तो मिस्टर अहमद आई फाइंड नो एक्सक्यूज और आई फाइंड नो रीजन नॉट टू एक्नोलेज द फैक्ट कि नो वन एक्सेप्ट मुस्लिम्स हैव द वर्ड ऑफ गॉड प्रिजर्व्ड विद देम। ठीक है ना, ये वर्ड ऑफ गॉड जो है ये सिर्फ मुसलमानों के पास है और किसी के पास, हम में से किसी के पास अल्लाह ताला का वर्ड नहीं है उसकी असल हालत के अंदर, क्योंकि हजरत ने तो फिर सूरह फातिहा पढ़ करके सुना दी थी लोगों को। तो बहरहाल ये लोग अच्छी तरह से एक्नॉलेज करते हैं, इनको पता है इस बात का कि इनके पास जो है वो तहरीफ शुदा चीज़ें मौजूद हैं। तो हकीकत तो यह है कि इन दोनों किताबों में तहरीफ इतनी हुई है कि असल कलाम का पहचानना भी आसान नहीं रहा है। मौजूदा तहरीफ शुदा इंजील की बिना पर आजकल के ईसाई कुरान की इस खबर को तस्लीम नहीं करते कि इंजील में कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लेकर खुशखबरी दी गई हो। इसका मुख्तसर जवाब वो काफ़ी है जो ऊपर खुलासे तफसीर में आ चुका है, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छा पिछली क्लास में हमने एक्चुअली खुलासे तफसीर अब तक पढ़ी नहीं है। ओ वो तो रह गया फिर हमारा। अच्छा चलिए, वो फिर पढ़ना ज़रूरी है, तो वो देखते हैं आगे को मुकम्मल कर लेते हैं पहले कि मुफसल जवाब के लिए यानी तफसीली जवाब अगर आपको चाहिए तो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इजहारुल हक का मुताला किया जाए जो मजहबी ईसाइत की हकीकत और इंजील में तहरीफात और बावजूद तहरीफात के इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें मौजूद होने के मुताल्लिक बेनज़ीर किताब है। खुद बड़े ईसाइयों के मकूले छपे हुए हैं कि अगर दुनिया में ये किताब शाया होती रही तो ईसाइत का कभी फरोग नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इजहारुल हक जो किताब है ना, तो उसके बारे में ईसाई मुबल्लिगीन ने कहा कि अगर ये किताब लोगों तक पहुंचती रही ना छप छप करके तो हम अब ईसाइत की तबलीग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कच्चा छट्टा ईसाइत के झूठ का परंदा जो है ना वो उन्होंने खोल करके बयान कर दिया। ये किताब अरबी जुबान में लिखी गई थी, फिर तुर्की और अंग्रेजी में इसके तर्जुमे छपे, मगर इसके शवाहिद मौजूद हैं कि ईसाई मिशन ने इस किताब को गुम कर देने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ की है। इसका उर्दू तर्जुमा अब तक नहीं हुआ था। हाल में इसका उर्दू तर्जुमा दारुल उलूम कराची के मुदर्रिस मौलाना अकबर अली साहिब ने और तहकीकात जदीदा मुफीदा मौजूदा ज़माने की मतबूआ इंजीलों से मौलाना मोहम्मद तकी साहब जो क्या के शागिर्द के साहिबजादे, तो उन्होंने उस्ताज दारुल हुकूम उन्होंने यानी वो जो उस वक्त यानी एक उस्ताज दारुल उलूम है वो, तो उन्होंने लिखी जो 3 जिल्दों में शाया हो चुकी है। इसकी तीसरी जिल्द में सफ़ा 182 से सफ़ा 362 तक इन्हीं बशारतों की तफसील मौजूदा इंजीलों के हवाले से और शुबहात के जवाबात मजकूर हैं। ठीक है, हाउ टू गेट दिस बुक देखें ऑनलाइन, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आई एम श्योर कि ये अपलोड भी हो रही होगी कहीं ना कहीं, वरना ये कि आपके जो कुतुबखाने हैं इंडिया के अंदर, माशाल्लाह यूपी से ताल्लुक है आपका, तो यूपी में तो सब कुछ है, तो वहाँ से आई एम श्योर वहाँ पे छपी हुई होगी मकतबा दारुल मकतबा देवबंद और इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, तो अब जो हमने मिस आउट कर दिया है खुलासा तफसीर के अंदर इसकी तफसील, तो वो पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी थी इस टॉपिक पर। तो वो हम कहाँ से शुरू करेंगे, शुरू से ही पढ़ लेते हैं खुलासे तफसीर इब्तिदा से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने बिल्कुल भी पढ़ी है। खुलासे तफसीर में इन आयात के बारे में फरमाते हैं कि सब चीज़ें अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, कालन या हालन यहाँ तक तो हमने पढ़ा था वैसे, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है, बस जो ऐसा बाअज़मत व शान हो उसकी अताअत हर हुक्म में ज़रूरी है, जिनमें से एक हुक्म जिहाद का है जो इस सूरत में मज़कूर है। इसके नुजूल का सबब यह है कि एक बार बार मुसलमानों ने बाहम तस्करा किया कि अगर हमको कोई ऐसा अमल मालूम हो जो हक तआला के नज़दीक नहायत महबूब है तो हम उसको अमल में लाएं। और इससे कबल जंग उहद में बाज़ जहाद से भाग चुके थे, जिसका किस्सा सूरह आल इमरान में है, और नीज़ वक्त नुज़ूल हुक्म जहाद के बाज़ को वो हुक्म गिना गुजरा था जिसका किस्सा सूरह निसा में है, ये भी हम पढ़ चुके थे। इस पर यह इरशाद हुआ कि ए ईमान वालों, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। खुदा के नज़दीक ये बात बहुत नाराज़गी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। अल्लाह ताला तो इन लोगों को ख़ास तौर पर पसंद करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिलकर लड़ते हैं कि गोया वो एक इमारत है जिसमें शीशा पिलाया गया है। यानी जिस तरह ये इमारत मुस्तहकम नाकाबिले शिकस्त होती है, इसी तरह वो मुजाहिदीन दुश्मन के मुकाबले से हटते नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि तुम जो कहते हो कि हमको वो काम मालूम होता जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, तो ये अमल तो फिर जिहाद है। फिर इसके नुज़ूल के वक्त गिरानी क्यों हुई थी तुम्हें और उहद में क्यों भाग गए थे? बावजूद इन तमाम उमूर के पेश नज़र होने के नहायत नाज़ेबा बात और खुदा को नापसंद है। यानी ये बात जो है अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है कि तुम इस तरह के दावे करो। ऐसी दावे की बात निकालना जिसका खिलाफ होना मालूम भी हो चुका है, तो इसमें लाफजनी और गलत दावे पर जजर किया गया, वाज़े बेअमल इसके मफहूम से खारिज है। ठीक है, यानी जो हमने अभी पढ़ा था ना कि दावत देने से मना नहीं किया जा रहा, वास करने से मना नहीं किया जा रहा, बल्कि दावा करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, उसी को उन्होंने लिखा है कि वाज़े बेअमल, यानी ऐसा वास करना कि जिस पर आप अमल खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस आयत के मफहूम से खारिज है, वो एक अलग टॉपिक है पूरा पूरा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हमने फिर पढ़ करके फिर उसके बाद मारूफ मसाइल पे चले गए थे। आगे कुफार के मुस्तहिक कत्लो कताल होने की इल्लत यानी ईज़ा रसानी तकजीब मुखालफत रसूल का बयान फरमाना मकसूद है, और इसी की मुनासबत से फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र फरमाते हैं। ठीक है, यानी कुफार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईज़ा रसानी और मुखालफत का मामला कर रहे थे ना, तो अब अल्लाह ताला अपने पुराने अम्बिया का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्यों बयान करते हैं? ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को जो है ना वो मजबूत किया जाए, लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि हम सब्त करें आप इन वाक़यात से आपके कल्ब को। ठीक है ना, कुरान में खुद अल्लाह ताला ने वजह भी बयान करी है इन वाक़यात के नाजिल होने की। ठीक है, आप के कल्ब को मजबूत करना, साबित करना, साबित कदम बनाना आप को। ठीक है कि भाई ये जो वाक़यात, ये जो ईज़ा रसानी और मुखालफत है, ये पहली दफ़ा आपके साथ नहीं हो रही, बल्कि हमारे सारे अम्बिया के साथ ये मामला हो चुका है। तो फिर इस मकसद से फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू किया कि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मुझको क्यों ईज़ा पहुँचाते हो, हालांकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। ठीक है ना, यानी उनकी कौम को पता था कि ये अल्लाह के नबी ही हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी निशानियाँ थी, मौजूद थी उनके पास। तो बनी इसराइल को तो उनकी नबूवत के ऊपर शक नहीं था ना। ठीक है, नबूवत पे शक जो है वो किसका किसको था? वो तो फिरौन की कौम को था, वो कहते थे कि ये नबी नहीं है। ठीक है, बनी इसराइल तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड थे, एक्सेप्ट यानी इस बात को मानने वाले थे कि ये अल्लाह के नबी हैं। जब भी तो फिर वो फौरन ही दो ग्रोह बन गए थे ना, एक जो था मिन शियाती ही वो, और यानी जो एक मूसा अलैहिस्सलाम वाला ग्रोह था और एक जो है फिरौन वाला ग्रोह था। ठीक है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले लोग थे। तो बनी इसराइल को तो पता ही था कि ये जो है वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन फिर भी ईज़ाएं पहुंचाते थे। यही तो नऊज़ुबिल्लाह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना मज़े की बात, यानी अजीब बात जो है ना वो यही थी कि मालूम होने के बावजूद जो है वो नबी के साथ ऐसा मामला करता है। तो वो ईज़ाएं मुख्तलिफ तौर पर थीं, जिनमें से बाज़ बाज़ कुरान मजीद में भी खुसूस सूरह बकरा में मज़कूर हैं, और हासिल इन सब का सरकशी और मुखालफत है। ठीक है, तो ये बनी इसराइल जो है ना, ये तो गुजर गए, अब जो है ये यहूदी की शक्ल में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी हरकतें जो हैं वो इनके अम्बिया के साथ होती थी। इनको पता था कि ये नबी हैं, लेकिन फिर भी ईज़ाएं पहुंचाते थे, फिर भी जो है ना वो इनके साथ बहुत ही यानी जिसको हम कहते हैं ना यानी बेकदरी वाला मामला करते थे अपने नबियों के साथ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुसलमानों में देखें ना, तो मुसलमानों में भी मुख्तलिफ जाहिर है नस्लें हैं, कौमें हैं। ठीक है, यानी कोई कहीं का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है, तो यानी ये जो गुनाह है ना, ये गुनाह गुनाह जो है ना, आपको अगर आप गौर से यानी देखें तो आपको ये एक एक ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है, कि गुनाह तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन किसी कौम में या किसी खानदान में या किसी कम्युनिटी में आपको कोई एक गुनाह जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट नजर आएगा, गालिब नजर आएगा, ठीक है ना। अगरचे कि और भी गुनाह होंगे लेकिन वो मोस्ट प्रेवलेंट नहीं होंगे उस कौम के अंदर, बल्कि वो जरा यानी मगलूब होंगे, वो लेस प्रेवलेंट होंगे, लेकिन कोई एक गुनाह जो है ना वो आपको गोया कि उस कौम की फीचर नजर आएगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गोया कि वो उनकी पहचान बना हुआ होगा। मिसाल के तौर पर आपको किसी एक इलाके के रहने वाले लोग जो है ना, अगर आप गौर से बहुत यानी बहुत सारे उनके लोगों का मुशाहिदा करें, उनके साथ मामलात करें, तो आपको शायद नजर आए कि उस कौम के अंदर आपको ना शहवत का गुनाह गालिब नजर आएगा। उस कौम के लोग जो हैं वो यानी ये जो जिनसी बेराह रवि होती है ना, वो वाले गुनाह जो है ना उसमें ज्यादा इन्वॉल्व आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये शहवत का गुनाह कहलाता है। नहीं, मैं मुसलमानों की बात करूं, मैं वेस्टर्नर्स नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात करूं, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करूं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान ही मैं अब जरा अपनी निगाहें दौड़ाना शुरू करें, अपने तस्वर की निगाहों को ना जरा दौड़ाना शुरू करें, तो आपको भी उम्मीद है कि शायद समझ में आ जाए, ठीक है, क्या किन किन की बात हो रही है। तो किसी कौम के अंदर आपको शहवत के गुनाह बहुत ज्यादा नजर आएंगे, गालिब, ठीक है। शहवत की सूरतें का मतलब ये होता है कि जिनसी बेराह रवि, जिसमें कि निगाहों की भी हिफाजत नहीं है, और पर्दा भी आपको जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज नजर आएगा, और आपको जो है वो नहीं जी, यूनिवर्सिटी वालों की बात नहीं कर रहा मैं, इलाकों की बात कर, इलाके, ठीक है। और बहरहाल किसी कौम के अंदर आपको नजर आएगा कि गुस्सा जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट, गुस्सा एक अलग रूहानी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो कहीं पे आपको गुस्सा जो है वो आपको बड़ा यानी नजर आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको गुस्से के मर्ज के अंदर उतना नजर आएंगे, वहां पर आपको शहवत का मर्ज जो है ना वो गालिब नजर नहीं आएगा, वो भी होगा वहां पर, लोग शहवत के गुनाहों में भी मुबतला होंगे, लेकिन जो गालिब गुनाह आपको नजर आएगा ना वो गुस्से वाले गुनाह होंगे, गुस्से वाली कैफियत। उसी तरीके से किसी और इलाके में या किसी और खानदान में आप देखें तो वहां पर आपको तकब्बुर वाला मर्ज जो है ना वो गालिब नजर आएगा। तकब्बुर एक बिल्कुल अलग चीज है, गुस्सा अलग चीज होती है। हाँ, तकब्बुर की वजह से गुस्सा आता है, ये वो अलग टाइप का गुस्सा होता है जो तकब्बुर की वजह से आता है, ठीक है ना। लेकिन गुस्सा बजाते खुद भी एक बीमारी है, ठीक है। तो कहीं पर आपको तकब्बुर जो है वो बड़ा प्रिडोमिनेंट जो है ना वो तकब्बुर वाला मसला नजर आएगा, ठीक है, और कहीं पर आपको तकब्बुर भी नजर नहीं आएगा, गुस्सा भी, यानी होता सब कुछ है लेकिन गालिब नहीं हो, तो तकब्बुर भी गालिब नहीं नजर आएगा, गुस्सा भी गालिब नहीं नजर आएगा, शहवत भी गालिब नजर नहीं आएगी। वहां के लोग जो है ना वो ये शहवत वाले गुनाह करते ही नहीं होंगे, है ना। वहां पे ये नहीं है कि जी कभी किसी के साथ सो रहे हैं तो कभी किसी के साथ सो रहे हैं तो कभी किसी के साथ सो रहे हैं, और तुमको कहते हैं ना कल्चर्ड और रिस्पेक्टेबल, इस तरह के लोग होंगे, ठीक है। लेकिन उस जगह पर आपको खुद पसंदी वाला गुनाह बहुत नजर आएगा, खुद पसंदी, जिसको कहते हैं, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ना, जो उजब में मुबतला होते हैं ना, खुद पसंदी में जो मुबतला होते हैं ना, तो ये जो है ना, ये इनमें शहवत के गुनाह होते ही नहीं है, ठीक है। और चूंकि शहवत के गुनाह नहीं होते ना, ये भी एक वजह बन जाती है उजब की, ठीक है। और जब का अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है, तो ये इसका तर्जुमा जो है ना वो खुद पसंदी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको ये यानी अगर आप बहुत ही स्टडी करने वाले हों और से जो है वो यानी अपनी इस्लाह की खातिर और इबरत की खातिर अगर लोगों को देखें तो ये चीज़ आपको नजर आ जाएगी, यानी कि दूसरों के ऊपर तनकीद करने की खातिर और दूसरों को बुरा समझने की खातिर ये नीयत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज अ सब्जेक्टिव स्टडी के तौर पर और इबरत ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होना चाहिए, कह रहा हूँ कि बनी इसराइल के अंदर, क्योंकि अभी बनी इसराइल की बात हो रही है ना, तो बनी इसराइल के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर आपको कौन सा वाला गुनाह जो है वो सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट नजर आएगा, वो उजब भी कह सकते हैं और तकब्बुर भी कह सकते हैं, तकब्बुर और उजब, ठीक है। ये बनी इसराइल के अंदर आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में भी आपको ऐसे इलाके नजर आएंगे या ऐसे खानदान नजर आएंगे कि जिसके जिनके अंदर बाकी गुनाह जो है ना वो कम 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 नजर आएंगे, लेकिन उजब और खुदपसंदी वाला गुनाह जो है ना ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट नजर आएगा, ठीक है। और ये जो गुनाह है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बल्कि सबसे खतरनाक गुनाह है, सबसे खतरनाक गुनाह है, ठीक है। क्या ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उजब और तकब्बुर का बायस बन जाता है? नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना ये उजब और तकब्बुर, यानी ये यही उजब और तकब्बुर है, ये बायस नहीं बन रहा, बल्कि ये तो उजब और तकब्बुर की समझ लें मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। कि जिसके अंदर उजब होता है ना, एक्चुअली जिसके अंदर उजब होता है वो, नहीं मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, उजब की मैनिफेस्टेशन जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में ऐसी डायरेक्टली मैनिफेस्ट नहीं होती है, ठीक है। होती भी है और नहीं भी होती है, एक एस्पेक्ट से होती है एक एस्पेक्ट से नहीं होती, ठीक है। तो ये जो उजब वाले लोग होते हैं ना, ये कुछ बातों में सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ बातों में सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर मजीद तफसील है इसकी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये उजुब जो है ये सबसे ज्यादा मोहलिक बीमारी, सबसे ज्यादा मोहलिक बीमारी है। तकब्बुर तो आप समझते हैं ना सबसे ज्यादा मोहलिक बीमारी, लेकिन नहीं, तकब्बुर से भी ज्यादा मोहलिक बीमारी वो उजुब है। और शहवत जो है ना वो तो इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती, शहवत तो बड़ी छोटी, इसके मुकाबले में शहवत की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। छोटी रूहानी बीमारी है शहवत एक्चुअली, ठीक है। तो हमें भी जरा अपने अंदर देखना चाहिए कि कहीं हम उजुब की रूहानी बीमारी में तो मुब्तला नहीं है, ठीक है। और उजुब वाले जो है ना ये पर्दे करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, ये इबादत करने वाले लोग होते हैं, उजुब का जो शिकार होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो बनी इसराइल जो थी ना ये, अच्छा, उजुब की बीमारी, अच्छा, जो जो उजुब के अंदर मुब्तला होते हैं ना उनमें आप एक, हाँ असल में मैं बात शुरू क्यों करी थी, मूसा अलैहि सलाम के तस्करे से शुरू करी थी ना, तो हाँ मूसा अलैहि सलाम का मामला किन के साथ था? बनी इसराइल के साथ, ठीक है। बनी इसराइल वाले जो थे ना ये तकब्बुर का भी शिकार थे और उजब का भी शिकार थे। इनके यहाँ एक खास एटीट्यूड था अंबिया अलैहि सलाम के साथ, एक खास एटीट्यूड था इनका अंबिया के साथ। वो क्या था जी? जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि पता था उनको कि ये अंबिया हैं, लेकिन उसके बावजूद अंबिया को ईजा पहुंचाते थे, अंबिया की नाकदरी करते थे, राइट, हत्ता के कत्ल भी कर देते थे अपने अंबिया को, कत्ल भी कर देते थे, ठीक है। उसी तरीके से जो कौम उजुब में मुबतला होती है मुसलमानों में, ठीक है ना, जो नस्ल जो कौम जो खानदान उजुब में मुबतला होता है ना, आप वहां पर देखेंगे उलमा को वो बिल्कुल घास नहीं डालेंगे, ठीक है ना। उनके अपने जो उलमा होते हैं ना, अपने खानदान के जो उलमा होते हैं, जैसे बनी इसराइल के अंदर जो मूसा अलैहि सलाम थे वो उनके खानदान के ही फर्द थे ना, राइट, उन्हीं के खानदान में से अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी ना मूसा अलैहि सलाम को, और जितने बनी इसराइल के अंबिया थे वो सारे खालिद से उसको बहुत ईजा पहुंचाया करते थे, उसके साथ बहुत जो है ना वो हमारे लैंग्वेज में जिसको कहते हैं ना नो लिफ्ट वाला मामला करते थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो उजब के अंदर मुबतला होते हैं ना, तो उनके खानदान के अंदर या उनके ही कबीले के अंदर अगर कोई आलिम बन जाता है ना तो वो उसको कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे, ठीक है ना, वो उसको बहुत ज्यादा यानी बिल्कुल ही जो है ना वो बेवकत तरीके से हैंडल करेंगे। शहवत वाले लोग ऐसा नहीं करते, शहवत के गुनाहों में जो मुबतला होते हैं ना वो फिर भी ऐसा नहीं करते, करते तो वो भी हैं मतलब, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते अपने अंबिया के साथ जितना जो है ना ये लोग करते हैं, ठीक है। अजीब, ये बहुत अजीब मसला है ये, ठीक है। शहवत अल्लाह ताला को गुस्सा कर दे, भाई सारे ही गुनाह है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी शहवत वाले जो है वो गुनाह गुनाह नहीं करते, वो गुनाह नहीं है या वो कम, भाई कंपैरेटिवली स्पीकिंग, ठीक है, कंपैरेटिवली स्पीकिंग वजूद वाला गुनाह जो है ना, ये ज़्यादा खतरनाक गुनाह होता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो वजूद में मुबतला होता है वो अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता है जब भी वो वजूद में मुबतला होता है, जबकि जो शहवत में मुबतला होता है वो अपने आप को गुनाहगार समझता है, ठीक है। पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी तो साजिद ने उनके सामने इसी तरह की बात रखी थी कि फलानी कौम के जो लोग हैं ना, अब नाम मैं आपके सामने नहीं लूंगा, ठीक है, वो उसकी वजह जाहिर है, लेकिन मैंने उनके सामने तो नाम लिया था। मैंने कहा कि जो फलानी कौम के लोग हैं ना, तो उनसे अगर कहो ना कि तुम गुनाह ना करो भाई, गुनाह छोड़ दो, तो उनका जवाब क्या आता है? उनका जवाब आता है अल्लाह साईं बड़ा करीम है, अल्लाह साईं जो है ना वो बड़ा, ठीक है ना, बहुत माफ करने वाला है, ठीक है, अल्लाह हमें माफ कर देगा, ठीक है ना। तो वो लोग ये जवाब देते हैं कि वो गुनाह नहीं छोड़ते, वो तौबा पे आमादा नहीं होते, लेकिन जवाब उनका क्या होता है? अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा माफ करने वाला है, ओ अल्लाह ताला जो है वो तो ऐसे वैसे, ठीक है, माफ देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कौम है ना, उनसे अगर आप कहें ना कि जी आप ये गुनाह क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, छोड़ दें इस गुनाह को, तो वो क्या जवाब देते हैं? उनका जवाब ये आता है, कौन से गुनाह मियाँ, कौन से गुनाह की बात कर रहे हो, हमने कौन सा गुनाह किया है, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो जवाब होता है ना, ये उजब वाले की तरफ से आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने जोम में वो कोई गुनाह कर ही नहीं रहा होता, वो तो कोई ऐसी बात नहीं करी उसने तो क्योंकि गुनाह हो, तो उसको अल्लाह ताला की माफी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने तो गुनाह किया ही नहीं है ना। उजब वाले का ये हाल होता है, जबकि शहवत वाले का क्या हाल होता है? अल्लाह माफ कर देगा क्योंकि वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ वो गुनाह कर रहा है, शहवत वो जो जिना कर रहा है, वो जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, ये गुनाह है, वो मान लेता है, ठीक है। उसी तरीके से गुस्सा जिसको बहुत ज्यादा आता है ना, तो वो भी एक्नॉलेज कर लेता है, उसको भी पता होता है यार मैं बहुत नुकसान कर रहा हूँ, अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, दूसरा का भी नुकसान कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो जो है ना अक्सर फिर डॉक्टरों के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, शेख के पास आता है, उलमा के पास जाता है कि भाई मैं अपने गुस्से से बड़ा परेशान हूँ, मेरे गुस्से का ना कोई इलाज होता है मुझे, ठीक है। लेकिन शहवत वाला जो है ना, ये किसी के पास जाएगा क्या? अगर कोई चल के इसके पास भी आ जाए ना, ये उसको भी जो है ना वो फारिग कर देगा, चलो भाई यहाँ से मैं कोई गुनाह वना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा संगीन गुना है, क्योंकि आखिरी बात करके आज खत्म करेगा कि गुना के बीमारियों में सबसे मोहलिक बीमारी कौन सी बीमारी होती है कि जिसको मरीज माने ही ना कि ये बीमारी है, तस्लीम ही करने से इनकार कर दे, वो मोहलिक बीमारी होती है। ये कोरोना वायरस मोहलिक बीमारी नहीं होती, उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि ये बीमारी है, बड़ी खतरनाक है, ठीक है। मोहलिक बीमारी वो मोहलिक वो होती है कि मरीज जिसको मोहलिक तस्लीम करने से इनकार कर दे, ठीक है ना, क्योंकि जिसने इनकार कर दिया अब वो तो इलाज करेगा ही नहीं और बीमारी तो बढ़ेगी और इसकी जान लेके छोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना क्लास खत्म करते हैं।